This is the Epilogue audio experience.
Hello, listener. Thank you for tuning into this podcast where I bring to your ears inspiring conversations with some of the best artists, singers, composers, lyricists. Every week I talk to a musical genius to find out their creative discipline. I am Eva Bhatt and you are listening to 9XM Soundcast from India's leading music channel 9XM. Do subscribe to this podcast on Epilogue Media, your one stop for engaging and entertaining podcasts. Padmashri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Sangeet Natak Academy awardee Ustad Ghulam Mustafa Khan is one of the most prominent names in the Hindustani classical music tradition. He has been a guru to legends of our Indian music industry like Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Manna Day, A.R. Rahman, Hariharan, Shan, Sonu Nigam and many more. We lost Ustad Ji a few months ago, but we are fortunate enough to be having his sons who are upholding and carrying forward the legacy of their gharana created by their forefathers and their late father. This episode features Murtaza Mustafa, who performs Hindustani classical, Sufi, fusion music, bhajans, Bollywood, etc. As a playback singer in Bollywood, you have heard him in songs like Pia Haji Ali in Fiza, Chupke Se in Sathia, Tere Bina in Guru. He is also a faculty member of Rahman's KM College of Music and Technology, Chennai. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट पर और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए.
Thanks for inviting me on your show, Eva.
शुक्रिया शुक्रिया सर. ये तो बहुत ही बड़ी बात है आज हमारे लिए, क्योंकि जो भी लोग हमारा पॉडकास्ट सुनते हैं वो संगीत प्रेमी तो है ही, लेकिन संगीत में अपना करियर बनाने वाले लिसनर्स और व्यूअर्स हैं. तो इट विल बी अ वेरी बिग थिंग दैट somebody लाइक यू and your brothers as well as your son will be sharing some brilliant experiences and learning jo aapne apne pitaji se seekha hai, apne experiences se jana hai. To sabse pehle agar hum aapke bachpan mein jate hain to hame bataye ki bachpan ki kya yaadein hain, pitaji ke sath aapne music kis tarah se seekha aur wo kaisa mahol tha agar hame thoda pata chale.
बचपने का मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहली बात तो मैं एक बहुत बड़े लेगेसी को बिलोंग करता हूँ, रामपुर सहसवान घराना. एंड मेरे पिताजी उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं. और इसमें यह हुआ कि जब हम लोग बड़े छोटे थे, तो क्योंकि हम एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल फैमिली को बिलोंग करते हैं
जी.
तो इट्स इन अ वे आई कैन से कि हम लोग अपनी पहली सांस से म्यूजिक ब्रीथ करते हैं. तो उसमें ऐसा हुआ कि हम छोटे छोटे थे तो पापा रियाज कर रहे हैं, जब पापा होते थे. पापा वॉज अ वेरी बिजी आर्टिस्ट, वो काफी ट्रैवल करते थे. बचपन में हमें बहुत कम दिखते थे घर में, और बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम सोते होते थे और वो चले जाते थे. हम सुबह उठ के देखते हैं तो पापा इज मिसिंग, ही इज नॉट देयर, ही इज आउट फॉर सम परफॉर्मेंस. तो इस तरीके से हमारा वो बचपना गुजरा. तो वी वर वेरी फॉर्चुनेट के मेरे दादाजी उस्ताद वारिस हसन खान साहब वो हमारे साथ थे. तो मेरे पापा नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने, दादाजी ने हमें शुरू किया, मुझे और मेरे छोटे भाई कातिल को हमें शुरू किया. वी वर आई वाज बेरली अराउंड 4.5-5 इयर्स ऑफ एज तब हमें शुरू किया. मेरा भाई मुझसे एक साल छोटा है, तो वो 3.5-4 साल का होगा. तो ऐसे ही हमने शुरू किया उनके साथ. तो क्योंकि मैंने जैसा बोला कि हमारे यहाँ संगीत पहली सांस से ही हम जीते हैं संगीत, क्योंकि हमारी हर ब्रेथ में म्यूजिक शुरू हो जाता है बचपन से. तो उस तरीके से हमारा रियाज शुरू हुआ. लेकिन दादाजी वॉज वेरी पर्टिकुलर कि हम रियाज करें, और बिल्कुल बहुत प्यार करते थे, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत स्ट्रिक्ट गुरु भी थे. तो वो हमें उस टाइम पे, तो बच्चे आज के तो बच्चे 4-5 साल के काफी चीजों से कनेक्टेड है, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था. तो We were very innocent that time. दादाजी हमें सुबह 5:30-6 बजे उठाते थे रियाज के लिए, उस टाइम पे व्हेन वी वर जस्ट 4.5 एज। तो हमें 5:30-6 बजे उठाते थे, वो बोलते थे फ्रेश हो, फिर हमें रियाज को लेके बैठ जाते थे दोनों भाई, फिर हम रियाज करते थे। वो मम्मी को नहीं, किसी को नहीं, अपने हाथ से हमें नाश्ता बना के खिलाते। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर कि हम क्या खाएं, कैसे खाएं, मतलब क्या होना चाहिए हमारी डाइट एंड ऑल दैट स्टफ,
क्या बात
गाना
है।
बजाना करना है, तो वो हमें नाश्ता अपने हाथ से कराते थे। और फिर वो हमें थोड़ा टाइम देते थे कि जाओ थोड़ा खेल लो, फिर उसके बाद ही वुड गिव अस वन टाइम, अगर हम उस टाइम पे नहीं आए तो पिटाई होती थी, तो हमारी पिटाई भी होती थी। तो फिर हम उस टाइम पे आते थे, फिर रियाज करते थे उनके साथ, फिर लंच के टाइम पे वो अपने साथ बिठा के खाना खिलवाते थे कि सही खाओ, आराम से खाओ मेरे साथ बैठ के, फिर हम खाना खाते थे, फिर वो आराम करते थे आफ्टर लंच। तो उस आराम के प्रोसेस में हम भी, हमें भी आराम करना है, ये कंपल्शन था। तो वो एक कंधे पे मुझे और एक कंधे पे भाई को हाथों पे अपने लेके और चिपटा के सुलाते थे साथ। फिर हम उठते थे शाम को जब 1-2 घंटा सो के, तो फिर हमसे बोलते थे ब्रश वगैरह करो और बैठ जाओ चलो रियाज को, फिर से फिर हम रियाज को बैठते। तो बहरहाल वो दिन भर यही रूटीन चलता था, गाना बजाना चलता था। और हम बड़े फॉर्चुनेट हैं क्योंकि आर्टिस्ट, मेरे पिताजी हमेशा एक चीज बोलते थे कि आर्टिस्ट कहीं भी पैदा हो सकता है, लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है कि हम अच्छे आर्टिस्टों के घर पे पैदा हुए, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ गॉड, ये उसकी देन है, हमारा इसमें कोई वो नहीं है। तो
क्या
इस
बात है।
तरीके से हमारा रियाज होता था। और मीन वाइल जब जब पापा मौजूद होते थे तो ही वुड ऑल्सो टेक हमारे, हमें बैठ के सुनते थे क्या कर रहा हूँ, दादाजी सुनवाते थे कि देखो मैंने ये तैयार कराया इनका, देखो ये किया वो किया। तो वो क्योंकि पापा ने भी इनिशियल ट्रेनिंग अपने वालिद साहब से ही ली थी, उस्ताद वारिस सरकार साहब से, तो वो ही सिलसिला हमारा चलता था। तो पापा भी फिर हमें लेके बैठते थे, फिर ऑन ऑफ पापा से भी सीखते रहते थे और दादाजी से भी हमने, तो कंप्लीट उधर से ही हमने तालीम लिया। और अभी भी कुछ ना कुछ जैसा क्योंकि ये जो विद्या है इसको बुजुर्गों ने कहा है, दिख्या सिख्या परिख्या, देखने से सीखने से और परखने से आती है।
क्या बात है
तो और एक चीज मेरे पापा बोलते थे, कभी आप प्रोग्राम सुनने जाओ किसी का
जी।
और उसको जब सुनो तो उसके अंदर बुराइयां मत निकालो, आप उसके अंदर से क्या अच्छाई है वो लेके आ जाओ, वो आपके काम की है। तो आप यू डोंट हैव टू फाइंड आउट व्हाट फॉल्ट ही इज डूइंग, व्हाट एवर इज गुड दैट इज योर लेसन, यू गेट इट होम एंड ट्राई टू इम्बाइब इट इन टू योर सेल्फ, अपने अंदर उसको उतारने की कोशिश करो कि ये अच्छी चीज है तो मुझे कैसे मिलेगी। तो ऐसे हमारा ट्रेनिंग चालू था और आज भी हम सीख ही रहे हैं, विद्यार्थी रहता है आर्टिस्ट तो कभी भी विद्यार्थी ही रहता है, और उम्र भर सीखते रहेंगे तो भी कम है। और ये तो एक समंदर है जिसका, कैसे हम समंदर के किनारे खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं दूर किनारे पे पानी और आसमान मिल रहा है,
जी
लेकिन सिमिलर वहां जो खड़ा है उसको हमारी तरफ वैसे ही दिखता है, तो कहीं इसका किनारा नहीं है। तो बस यही है, जितना डीप जाओगे उतना गहराई पता चलेगी, अभी तो हम कहीं नहीं पहुंचे और नीचे जाना है अभी तो बहुत दूर है।
क्या
बस
बात है।
यही दुआ है अल्लाह से कि हमें वो इल्म और दे और हमारी मदद करे।
वाह मुर्तजा खान सर, आज आपने सच्ची में इतना इतना अच्छी तरह से वो डिस्क्राइब किया अपना बचपन, जैसे हमारे आंखों के सामने बिल्कुल आ गया। और कितनी कितनी बड़ी बात है कि उस्ताद श्री गुलाम मुस्तफा खान इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद और इतने गुणी होने के बावजूद इतने हम्बल थे। और मेरे ख्याल से जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उनके बारे में, वो काफी मॉडर्न और काफी अहेड ऑफ हिज टाइम्स थे। क्योंकि वो ऐसे नहीं थे कि उन्होंने अपने आप को एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के उसमें ही सीमित रखा। इसीलिए उन्होंने हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, उनके नामी कलाकारों को उन्होंने संगीत की तालीम दी। और वो काफी अपने विचारों में भी मुझे ऐसा लगता है कि काफी अहेड ऑफ हिज टाइम्स थे।
He was a very broad-minded person. और उन्होंने हमेशा एक चीज बोली, because he himself did a lot of work in music in different genres.
जी।
और वो उन्होंने ancient music पे काम किया जो 1200 साल बाद किसी ने गाया था, भरतनाट्य शास्त्र संगीत, भरत देशी संगीत रत्नाकर, इन ये चीजें खाली किताबों में बंद हो गई थी, पुराने शास्त्र थे। लेकिन उन्होंने एक पंडित कैलाश चंद्र बृहस्पति जी थे जो म्यूजिकोलॉजिस्ट थे, बहुत अच्छे म्यूजिकोलॉजिस्ट थे, उनके साथ कोलैबोरेट करके प्रैक्टिकल उन्होंने गाया, क्योंकि बृहस्पति जी तो गवैये नहीं थे, वो म्यूजिकोलॉजिस्ट थे। तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि म्यूजिकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो गाते बजाते नहीं ज्यादातर, बहुत कम ऐसे होते। तो वो उन्होंने इच्छा जताई, मेरे मम्मी के ताया जी थे, बृहस्पति जी वॉज फ्रॉम रामपुर एंड माई मम्मी इज ऑल्सो फ्रॉम रामपुर, तो मम्मी के ताया जी से उनकी दोस्ती थी। तो उन्होंने ये एक इच्छा जताई कि भाई मैं ये प्रैक्टिकल ये काम कर रहा हूँ मैं एंशियंट म्यूजिक पे, मैं तो गाता नहीं हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके दामाद हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब, तो वो मेरे साथ अगर जुड़ जाए तो ये मेरा काम सक्सेसफुल हो जाएगा। तो फिर पापा से मेरी मम्मी के ताया जी ने, उस जमाने में लेटर्स होते थे, पापा वाज स्टेइंग इन कानपुर जाता है, तो पापा को उन्होंने लेटर भेजा, और बृहस्पति जी भी कानपुर में थे, तो पापा को मेरे मम्मी के ताया जी ने लेटर भेजा कि बेटा ऐसे ऐसे मेरे दोस्त हैं कैलाश चंद्र बृहस्पति जी, ये एक एंशियंट म्यूजिक पे रिसर्च कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप इनके साथ कोलैबोरेट, आप इनके साथ जुड़ो और प्रैक्टिकल आप करो, क्योंकि वो तो गाते नहीं है। तो पापा बोले बिल्कुल मैं करूँगा, क्योंकि गाना, पापा का एक वो कहना है कि संगीत जो है वो एक किताब है और जॉनर्स उसके चैप्टर्स हैं, और कोई भी किताब बगैर बगैर उसके चैप्टर्स की पूरी नहीं होती है। तो एक्चुअली कानपुर में पापा कहीं प्रोग्राम में गा रहे थे और उन्होंने एक तान मार के और सा और कोमल रिखब के बीच में कहीं लाके रोक दिया श्रुति, और एंशियंट म्यूजिक में श्रुतियों का ही जिक्र है 22। तो वो चीज बृहस्पति जी ने सुनी थी, दैट्स व्हाई ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद पापा। फिर उन्होंने साथ में काम किया और वो 58 में पापा वॉज बॉर्न ऑन 3rd March 1931, और उन्होंने 58 मतलब 27 साल की उम्र में उनको सेंट्रल संगीत नाटक एकेडमी ने 7 रिकॉर्ड 30-30 मिनट के प्रिजर्व किए हैं, वेरी यंग आर्टिस्ट टू बी प्रिजर्व बाय संगीत नाटक एकेडमी। तो वो काम हुआ। फिर उसके बाद पापा हमेशा एक चीज बोलते थे, बेटा जब हम थीसिस लिख सकते हैं, जब हमने थीसिस किया है, तो अगर हम एक छोटा मैटर ड्राफ्ट नहीं कर सकते तो वी हैव नॉट डन जस्टिस टू द थीसिस। तो अगर हम ख्याल गाते हैं तो हम गजल भी गा सकें, और उन्होंने गाई है वो यूट्यूब वगैरह पे 1970 की, बीबीसी लंदन की बहुत बेचैन है दिल वो यूट्यूब पे है, वो बिल्कुल मौजूद है। और वो इतने ब्रॉड माइंडेड थे कि आज लोग बोलते हैं हम ऑर्केस्ट्रा यूज कर रहे हैं, उन्होंने सितार फ्लूट वायलिन तबला ढोलक सब यूज किया उसमें, सारी चीजें, तो उस टाइम पे उन्होंने ऑर्केस्ट्रा यूज किया। तो वेरी ब्रॉड माइंडेड। और वो बोलते थे हम लोगों को भी, उन्होंने एक चीज बताई कि बेटा गाना गाओ, गाना गा रहा तो गाने में एक ही चीज का ध्यान रखो, सुर और लय, बाकी कुछ भी गाओ सब गाओ, उसमें कोई फर्क परवाह नहीं। इसीलिए उन्होंने भी फिल्मों में भी गाया, मराठी गाना गाया उन्होंने, एक गुजराती गाना भी गाया, आई डोंट नो वेदी और अदर, यू नो ना मोरी प्रीत रमई थे सब लोग बोला नैना पर सुनाज,
यस
वो उन्होंने गाया। तो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे और हर तरीके से काम करना चाहते थे, और उसका ही नतीजा है जो कोक स्टूडियो में भी उन्होंने किया, 83 इयर्स की एज में एक बैंड के साथ गाना और इतना आराम से गाना, फ्लेक्सिबल, क्योंकि हम क्लासिकल वाले जो होते हैं ज्यादातर हम लोग एक वो होता है कि अरे ये लाइट म्यूजिक क्या है, पापा का ये नहीं था, पापा लाइट म्यूजिक, अरे ये भी एक चीज है, इसको भी करना चाहिए, दैट वाज हिज कॉन्सेप्ट, दैट वाज उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान कि ये है, इसको क्यों नहीं गाना चाहिए, गाओ। और वो हमेशा एक चीज बोलते थे, आप जो चैप्टर गा रहे हो, जो चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके ऊपर दूसरे चैप्टर का इंप्रेशन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं ख्याल गा रहा हूँ तो उसमें गजल ठुमरी का अंदाज नहीं होना चाहिए, ठुमरी का असर नहीं होना चाहिए, मैं ठुमरी गा रहा हूँ तो उसमें मेरे ख्याल का असर नहीं होना चाहिए। बॉलीवुड में फिल्मी गाने गीत गा रहे हैं तो उसमें वो क्लासिकल और दूसरे जॉनर्स का असर नहीं होना चाहिए। तो आप जो चीज गा रहे हो उसका, और उनका एक और कहना था, क्योंकि ये बात बड़ी खूबसूरत है, इट हैज टू गो टू पीपल एंड इट्स लाइक अ मैसेज फ्रॉम हिम एंड इट्स लाइक अ लेसन फॉर पीपल टू लर्न, हमारे लिए तो बड़ी एक सीखने वाली चीज है, तो हम चाहते हैं कि ये जो उनकी उनसे हमने सीखा ये आगे भी जाए। वो एक चीज बोलते थे कि बाग में हर कलर के फूल होते हैं और अलग अलग खुशबुओं वाले फूल होते हैं, हर कलर की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, जब तक बहुत सारे रंग के फूल नहीं होंगे तो बाग खूबसूरत नहीं लगेगा, ऐसे ही म्यूजिक का।
क्या बात है, क्या बात है. आई थिंक जस्ट सो सो फॉर्चुनेट टू बी यू नो लिसनिंग टू ऑल दिस टुडे फ्रॉम यू सर. थैंक यू सो मच. इसीलिए यू नो मन्ना डे से लेकर, गीता दत्त से लेकर, यू नो आज के कंटेम्प्रेरी म्यूजिशंस, राइट फ्रॉम रहमान टू सोनू निगम, वो सब यू नो बिल्कुल अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाए यू नो उस्ताद सर से. तो ये कितनी कितनी अमेजिंग बात है. और यू नो अगर आप यू नो कुछ गुनगुना सकते थे आज हमारे लिसनर्स के
जरूर,
लिए,
मैं और
व्यूअर्स
एक
के
चीज
लिए.
बताऊंगा,
जी जरूर
मैं एक और चीज बताऊंगा कि हिंदुस्तानी म्यूजिक में घराना सिस्टम,
जी
और घराना इज एक्चुअली स्कूल ऑफ म्यूजिक।
बिल्कुल
एक एक हर घराने की अपनी खासियत होती है, उस अंदाज से सिखाया जाता है, उनके घरानों की अपनी एक स्पेशलिटी हो। लेकिन घराना मेरे पापा उसको बोलते थे, ही वुड से जो शागिर्द होता है वो बेटा बेटी होते हैं।
बिल्कुल
तो घराने का मकसद होता है, ही ब्रोक देम इनटू टू, घर आना।
होम कमिंग.
तो जो भी है बच्चा है वो अपने घर आता है सीखने। और हमारे बुजुर्गों ने तो एक बात है, जो भी घराने के लोग हैं, सारे बुजुर्ग लोग जो होते थे वो राजा नवाबों के उस्ताद होते थे और उनके खुद म्यूजिशियंस होते थे।
बिल्कुल
तो वो बच्चों को वो जो भी तालीम लेने आते, तो उस टाइम पे तो सारे पंजी मांगने वाले और गरीब बच्चे होते थे जो उस्तादों के पास आके, तो वो घर में रह के कपड़े पहना के खिला पिला के सिखाते। तो उस जमाने में फीस नहीं हुआ करती थी, क्योंकि राजा नवाब इतनी सैलरी दे दिया करते थे कि हाथी घोड़े बंदे थे और सेवक होते थे घरों में उस्तादों के। तो उस टाइम पे वो सिस्टम था। तो वो घराना जो था ना, वो बहुत अच्छा दौर था, और हम वी आर वेरी प्राउड कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा काम किया है, हम भी करना चाहते हैं, लेकिन आज वो जमाना नहीं है। और प्लस उस जमाने के शागिर्द भी बड़े वैसे होते थे, डेडिकेटेड।
डेडिकेट
आज का दौर ऐसा है कि मीडिया का दौर है, तो पीपल वॉन्ट टू बी इन लाइमलाइट इमिजिएटली। उस जमाने में मुझे याद है, मैंने जिक्र सुना है कि उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब, जो पापा के नाना जी थे, उन्होंने अपने शागिर्द, अपने दामाद उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब, हु वॉज द फर्स्ट पद्म भूषण इन वोकल म्यूजिक,
क्या बात है.
उनको उनको 12 साल एक ही राग में तालीम दी। आज तो 12 दिन बाद दूसरा राग चाहिए शागिर्द को, तो बड़ा मुश्किल चीज है, क्योंकि वो लोग जानते थे कि हम क्या दे रहे हैं और इससे सराउंडिंग कैसा अच्छा बनेगा, गाना बजाने इनका कैसा डेवलप हो। तो मैं भी आजकल जो मेरे शागिर्द हैं उनको मैं बोलता हूँ और मैं सिखाता हूँ, बड़ा पीसफुली सिखाता हूँ कि भैया सुकून से सीखो। दो तरीके के सीखने होते हैं, एक उस्ताद के तरीके से और एक शागिरद के तरीके से। उस्ताद के तरीके से सीखने में शागिरद का फायदा है, नहीं तो हम बेवकूफ तो उस्ताद कभी भी बना सकता है, तो हम बेवकूफ बनाने थोड़ी बैठे हैं। अगर हमें देना है तो हमने भी जैसे लिया है अपने बुजुर्गों से, हम चाहते वैसे ही हमारे शागिरद को हम दें, क्योंकि ये एक विद्या जो है ये आगे बढ़ाने वाली चीज है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारा हमारा हिंदुस्तान हमारे कल्चर की वजह से जाना जाता है और संगीत उसमें एक बहुत बड़ा कल्चर का पार्ट है। तो
बिल्कुल
ये बड़ा जरूरी है कि ये ऐसे ही आगे बढ़े, तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़े, और इसी वजह से कुछ शागिर्द हमारे भी बॉलीवुड में, मेरे भी काफी कुछ शागिर्द हैं, भाइयों के भी, भाई के भी हैं, और सब मेरे शागिर्द हैं। मनमीत सिंह है, रहमान
यस
भाई की फैमिली है, इस्माइल भाई का बेटा है, अनुष्का
यस
मनचंदा है, मोहम्मद इरफान है, तबू है, और हुमा कुरैशी,
मक्रेशी
हाँ काफी लोग सीख रहे हैं, और वैसे भी काफी लोग सीखते हैं। मेरे पास विदेशों से भी आते हैं लोग, ऑनलाइन भी करता हूँ, और घर भी आते हैं लोग, इवन इंडिया से लोग काफी दूर दूर से मेरे पास सीखने आते हैं। तो वो एक प्रोसेस है, क्योंकि मैं गाता हूँ, और मैं क्योंकि मेरी एक जिम्मेदारी है घराने के होने की वजह से कि ये मैं पास ऑन भी करूँ अगली जनरेशन को। तो जो लोग इच्छुक हैं और जो मुझसे सीखना चाहते हैं वो मेरे पास आते हैं, प्यार से आते हैं, और मैं भी उनको प्यार से ही सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो जो भी बच्चा हमसे जुड़ता है, जो भी शागिर्द जुड़ता है, वॉट एवर, मुझसे बड़ा भी हो सकता है, मुझसे छोटा भी हो सकता है उम्र में, लेकिन वो एक परिवार का हिस्सा होता है। हम लोग इसको ऐसे मानते हैं कि वो हमारा, मेरे पापा बोलते थे, जो हमसे मिला है वो हमारा रिश्तेदार था और वो बिछड़ गया था और आज अल्लाह ने मिला दिया। अब इस बहाने हिम्मत, आप भी मेरी एक रिश्तेदार थी, इस बहाने इंटरव्यू के बहाने अल्लाह ने मुझे आपसे मिला दिया,
ओह माय गॉड.
और ये उसकी मेहरबानी है कि उसने आज हमें रूबरू करा दिया, नहीं तो आप कहीं मैं कहीं, बम्बई में होते हुए एक दूसरे को कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं। लेकिन और आप भी इंडस्ट्री में हो, मैं भी इंडस्ट्री में बरसों से हूँ, बट इट इज द फर्स्ट टाइम आई एम इन चैट विद यू. तो वो उसी की मेहरबानी है, उसने हम बिछड़े हुए को मिला दिया, उसकी मेहरबानी. सो वी हैव टू टेक इट दैट वे.
मतलब आपके पिताजी, आपके दादाजी, उन सब ने संगीत को बिल्कुल एक डिवाइन, यू नो, एक डिवाइन गिफ्ट की तरह ही, यू नो, हमेशा माना और यू नो इसकी सीख दी हम सबको कि संगीत एक कितनी, यू नो, डिवाइन और पवित्र, यू नो, कला है.
मैं बताता हूँ आपको, एक हिस्सा बताता हूँ. पापा ने मुझे बताया, पापा ने पहले तो अपने वालिद साहब उस्ताद साहब से सीखा, फिर अपने चाया जी बहुत बड़े आर्टिस्ट थे उस जमाने के, उस्ताद फिदा हुसैन खान साहब, जो बड़ौदा कोर्ट में म्यूजिशियन थे.
वाओ.
और उनके बाद फिर अपने कजिन उस्ताद निसार हुसैन खान साहब, जो 11 साल की उम्र में बड़ौदा दरबार में किंग जॉर्ज द फिफ्थ की रिकमेंडेशन पे कोर्ट म्यूजिशियन हुए थे, उनसे सीखा. तो पापा बताते थे कि बेटा मैंने अपने बड़े अब्बा मतलब चाया जी उस्ताद फिदा हुसैन खान साहब से पूछा, अब्बा हम आकार में रियाज क्यों करते
जी,
आकार में हम लोग क्लासिकल वाले आ में रियाज करते हैं, आकार में क्यों रियाज करते हैं. तो उन्होंने इतना खूबसूरत जवाब दिया कि पापा बोलते हैं मेरी जिंदगी का एक वो बड़ा बहुत अहम हिस्सा बन गया था. उन्होंने एक चीज बोली, बोले बेटा हम आकार में निराकार को साकार करने की कोशिश,
आकार में निराकार को साकार, आहा,
साकार करने की कोशिश करते हैं. तो पापा भी एक चीज बोलते थे, बेटा जब बैठो रियाज करने तो ये सोचो कि अल्लाह के हुजूर बैठे हो और तुम उससे मांग रहे हो, उससे मांग रहे हो. तो जब तुम उस नियत से बैठोगे कि तुम अल्लाह के हुजूर बैठे हो और मांग रहे हो, तो वो सबको देता है तो तुम्हें क्यों नहीं देगा, तो तुम्हें भी देगा. तो उस नियत से बैठो, जैसे नमाज के लिए, इबादत के लिए वुजू करना जरूरी है, पूजा के लिए स्नान फिर ध्यान होता है, ऐसे ही गाने बजाने के लिए भी है कि पहले अल्लाह का ध्यान करो और उसका नाम लेके और बैठो और उससे मांगो तो वो देगा, जरूर देगा. वो भी एक इबादत है ना, ये भी इबादत है. क्योंकि जब हमारे शरीर एक आवाज, जो म्यूजिक है हमारा, वो एकदम ही साइलेंस से शुरू होता है, हमारा संगीत साइलेंस से शुरू होता है.
बिल्कुल.
और जब अंदर सुकून होएगा और उसके अंदर से जो पीसफुल सोल के अंदर से आवाज निकलती है, वो ईश्वरी आवाज होती है, अल्लाह की आवाज होती है, और उसमें नूर होता है. फिर उसको हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है, वो ऐसे नहीं मिलता है. तो इबादत ही है ये, संगीत भी इबादत है कि अल्लाह जिसको दे दे उसकी मेहरबानी, हर किसी को मिलता नहीं है. और उसने जिस जिसको दिया, हमें भी थोड़ा सा बहुत तिनके भर दिया है, उसकी बड़ी मेहरबानी है ये. और हम बड़े शुक्रगुजार हैं उसके कि हमें, एक तो सबसे पहला कि हमें संगीत के घर में पैदा किया है, जहाँ समंदर है संगीत का, हमें उस संगीत के समंदर में पैदा किया. उसके बाद फिर हमें तालीम मिलने का मौका दिया, फिर अब ये हमें अल्लाह ने एक और ड्यूटी दे दी कि सिखाओ भी. तो ये उसकी मेहरबानी है, हर तरीके से उसकी मेहरबानी, शुक्र है उसका. और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अल्लाह हमें और इसी तरीके से संगीत से नवाजे और हमारी मदद करे कि हम भी गाएं और हमारे शागिर्दों को, बच्चों को भी सिखाएं और अच्छा गवाएं. वो गवाने वाला तो वो है, लेकिन हमें वो राह दे कि हम उन्हें सिखा पाए. क्योंकि सिखाना जो है, गुरु भी वही है और सबसे बड़ा गुरु वही है अल्लाह. वो देता है, जो भी देता है, जिसके नसीब से जो होता है वो दे देता है. क्योंकि कोई भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, म्यूजिशियन हो, वो सर्व कला संपूर्ण नहीं है. सर्व कला संपूर्ण तो अल्लाह ही है, ईश्वरी है, वो ही है. तो वो हमें देता है. मेरे पापा बोलते थे, वी आर रिसीवर्स, वी आर रिसीवर, और हम रिसीव करके आगे फॉरवर्ड करते हैं. हमारे हिस्से में दिया है कि भैया ये बच्चे को सिखाना है, इनको गाना सुनाना है, तो हमारी ऑडियंस को सुनाना है, तो वो हमें उन तक पहुंचा देता है और उन्हें हम तक पहुंचा देता है. तो हमें जो मैसेज मिलता है, हम वो इट्स लाइक एनकोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस. It's received from up and we deliver it immediately to the people concerned. तो ऐसे ही शागिर्दों के लिए वो हमें हमें वो देता है कि भैया इसके हिस्से का ये है मेरे पास, तेरे जरिए देना है, तू दे दे इसको. तो हमारे हाथ से उसको दिलवा देता है. और यही एक चेन पैसे की भी है, सारा नियम अल्लाह का ही है. मुझे कहीं से पैसा मिलता है, मैं किसी को देता हूँ, वो किसी को देता है, ये एक चेन है. ऐसी विद्या का भी चेन है, हर चीज का एक कुदरती निजाम है उसका बनाया हुआ है और वो चल रहा है, उसी की
वाह
मर्जी से चल रहा है। और देखो नहीं तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा गवैया है और वो गाना गाने बैठा, गला खराब हो गया, नहीं गा पाता है। गवैया तो बहुत बड़ा है, नहीं गा पाया, क्यों? अल्लाह की उस वक्त मर्जी नहीं थी।
हाँ बिल्कुल सही
बहुत अच्छा
बिल्कुल
पायलट होता है, प्लेन क्रैश हो जाता है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट के इश्यू से मर जाता है। तो सारा जो है ना वो उसी का है। और इसीलिए मेरे पापा का, ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल, तो उनकी एक बंदिश के मैं बोल बताता हूँ।
क्या बात है
उन्होंने बंदिश लिखी, सूझत नाही कछु ध्यान ज्ञान, सूझत नाही कछु ध्यान ज्ञान, तोरी कृपा बिन घट घट प्रगट, तू सबई में एक समान, सब में एक समान है वो। फिर उन्होंने बोला कि अब समानता तो हो गई, अंतर भी दिखाओ। थोड़ा सा अंतरे में उन्होंने बोला मैं अंतर दिखाऊंगा। तो उन्होंने बोला, उनका पेन नेम है रसरंग, पापा का पेन नेम इज रसरंग।
रसन
तो उन्होंने अंतरे में लिखा, अकल बुद्धि सकल सिद्धि, शक्ति भक्ति माया मुक्ति। अकल बुद्धि सकल सिद्धि, शक्ति भक्ति माया मुक्ति, रस रंग सब कछु नाही, जा पे कृपा करे साईं वही पात सम्मान। तो उस पे जिसकी मेहरबानी हो जाए, तो बस उसी का है, जो भी है उसी का दिया हुआ है। एंड वन थिंग यूज टू से, हर इंसान जो है एक इनविजिबल एस्केलेटर पे चल रहा है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है वो। चाहे वो गा रहा है, लड़ रहा है, प्यार कर रहा है, या वो सिखा रहा है, सीख रहा है, कुछ भी, जो भी कार्य अपनी जिंदगी का कर रहा है, ही इज मूविंग टुवर्ड्स हिज डेस्टिनेशन। वो अल्लाह की तरफ बढ़ रहा है, वो उसको वो सफर दिख नहीं रहा है, वो सोते में भी चल रहा है, जगते में भी चल रहा है, हर हर मोमेंट वो बढ़ रहा है अपनी मंजिल की तरफ। और जब उसका स्टेशन आ जाता है, वो उतार लिया जाता है। तो दैट इज वॉट हिज फिलोसफी इज।
ओह आई थिंक टू टू स्पिरिचुअल एंड सो सो रिच सो अहेड ऑफ हिज टाइम्स जैसा कि मैंने कहा. एंड कितनी सारी इम्पोर्टेंट बातें आपने आज गोल्डन यू नो सीखे हमारे साथ शेयर की. आई थिंक आवर लिसनर्स एंड व्यूअर्स आर ऑलरेडी यू नो मंत्रमुग्ध कर दिया है आज हमने आज आपने हम सबको
हमारा देखिए,
सामने.
मैंने ये बात जैसे मैंने पहले बोला है, जो हमने सीखा है इसको आगे देना हमारा फर्ज बनता है। इन बातों से भी बड़े इंस्पिरेशन मिलते हैं लोगों को, क्योंकि क्या होता है हमारे फील्ड में ऐसा है कि आज बच्चे जो हैं बड़े जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं,
बिल्कुल सही कहा आपने.
है ना। हर हर फील्ड में आज यंग जनरेशन डिप्रेशन का ज्यादा शिकार है, पहले नहीं होते थे, पहले बड़े
आपके
पॉजिटिव
हिसाब
होते थे।
से ऐसा क्यों है?
बड़ी देखो, एक तो पहले दुनिया बड़ी छोटी होती थी, आज दुनिया पहले बड़ी होती थी, आज छोटी हो गई है। क्या है, बच्चों को इतना कुछ देखने मिल रहा है, तो अब किसी का सक्सेस देखा, अरे मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे ये नहीं मिल रहा है। लेकिन अल्लाह की मर्जी से सब मिलता है, जो आपके हिस्से का वो दे दिया जाएगा आपको। क्योंकि आप कितना भी किसी चीज के पीछे भागो, इफ इट इज नॉट योर्स, इट इज नॉट योर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इफ इट इज योर्स, इट विल कम टू यू, गॉड विल सेंड इट टू यू। So, हमें वो सोचना चाहिए। और क्या हो गया, पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, आज
बिल्कुल न्यूक्लियर
है ना, आज हर
ये
न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। तो उसमें भी ये हो गया, पहले तो बहुत सारे लोग जब साथ में होते थे तो वो समझाने वाले होते थे, अगर ये नहीं है तो वो समझा देंगे, मामा समझा देंगे,
इमोशनली
चाचा
एक
समझा
बहुत ही
देंगे।
सिक्योर्ड एनवायरनमेंट था.
और इमोशनल बॉन्डिंग भी थे,
बॉन्डिंग थी जी
आज
बिल्कुल.
वो बॉन्डिंग्स भी खत्म हो गए। आज क्या हो गया, हर आदमी घर में है, मैं अपने व्हाट्सएप पे हूँ, मेरा बेटा अपने व्हाट्सएप पे है, और हर आदमी अपने व्हाट्सएप पे है, या फेसबुक पे है, या किसी एक ऐप पे है ना, सोशल मीडिया पे। उस वजह से क्या हुआ है कि दुनिया में क्या हो रहा है बच्चों को इमिजिएटली पता चल जाता है। अब आप उस तरफ काम नहीं कर रहे हो, लेकिन वो हासिल करने आया आपको, कैसे होएगा?
बिल्कुल बिल्कुल
आपको हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। पहले लोग मेहनत करते थे, फिर उसके पीछे भागते थे। आज सीखने वाला जब आता है तो वो ऑलरेडी कहीं डायरेक्टर प्रोड्यूसर से रिश्तेदारी है, पहचान है, उधर पहले बात हो जाती है कि गाना गाना है, इसलिए वो हमारे पास आ रहा है सीखने के, 15 दिन बाद उसको गाना है। पहले ऐसा नहीं था, हमें मालूम है ना, हमारे वो हम लोगों को तो बुजुर्ग लोग डांट देते थे, बहुत पिटाई भी खाई है और डांट भी बहुत खाई है। आज तो बच्चों को डांट दो तो ईगो इश्यू हो जाता है, ईगो हर्ट हो जाता है। तो यही वजह है जो है, तो ये बच्चों को बड़ा समझने की चीज है कि हमें जैसा गीता में लिखा है ना, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। फल तो वो देगा, जब कर्म करोगे तो फल तो वो देने ही वाला है, उसने वादा किया वो देगा। लेकिन हम कर्म तो करें नहीं और फल ही फल मांगते रहे तो कैसे होएगा? हम एक ऐसा है कि एक प्लास्टिक के पेड़ के नीचे बैठ के और हम आम खाना चाहते हैं, नहीं हो पाएगा। उसको पहले पेड़ को ग्रो करना पड़ेगा, हमें एक नेचुरल पेड़ को ग्रो करना पड़ेगा ताकि उसमें आम निकले, फिर हम खाएं। एक प्लास्टिक के आम को तो हम देख देख के बोले कि मुझे आम खाना है, लेकिन प्लास्टिक के पेड़ से ही निकाल के खाना नहीं हो सकता। उसके लिए आपको आम का पेड़ लगाना पड़ेगा, और उस आम के पेड़ को लग के बड़ा होने में और आम देने में टाइम लगता है। वी हैव टू रियलाइज ऑल दिस। तो ये बच्चों को
बिल्कुल
बड़ा सोचने की बात है कि बड़ा जरूरी है। और जमाना बड़ा, अभी तो बहुत अच्छा हो गया बच्चों के लिए, क्योंकि दुनिया बड़ी छोटी हो गई है, तो हमें कुछ हासिल करना है तो नॉलेज बड़ी इजी हो गई है। आज हम, आप वहां बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, और हम एक दूसरे से रूबरू हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं एक दूसरे को। तो ये तो पहले तो मुमकिन नहीं था हमारे बचपने में ना, आपके बचपने में ही मुमकिन नहीं था, हमारे बचपने में नहीं था ये मुमकिन। लेकिन
बिल्कुल
आज तो बच्चा पैदा होता है तो आईपैड है, लैपटॉप्स हैं, टीवीज हैं, प्ले स्टोर है, प्ले गेम्स हैं, और क्या क्या पता नहीं क्या क्या है, दुनिया भर की चीजें अवेलेबल है ना, आईपॉड्स हैं, ये है। और आप किसी को भी कभी भी सुन सकते हो, पहले ऐसा नहीं था। आज आप यूट्यूब पर जाओ, जिसको सुनना है जो सुनना है सुन लो, आप अवेलेबल है, पहले ऐसा नहीं था। तो सीखने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ती थी, आज कम मेहनत करना है लेकिन करने को तैयार नहीं है बच्चे, ये एक
बिल्कुल
प्रॉब्लम है। तो
बिल्कुल
ये
बिल्कुल
करना
सही
पड़ेगा
कहा,
थोड़ा सारा, तो
बिल्कुल मुझे
ये
लगता
बड़ी
है
जरूरी
कि
चीज है।
जी, मुझे लगता है
आई
कि
होप
लोग हर एक
मैं बहुत,
सर सर आप बहुत
आई होप
ही
मैं बहुत लेंदी
ही
नहीं, मैं बहुत लेंदी नहीं कर रहा हूं।
बहुत ही बड़ी बात, बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, आपको नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक के नसीब में तो नहीं होता है और नहीं मुमकिन कि गुलाम मुस्तफा खान से कभी रूबरू हो या उनकी बातें कभी जानने को मिले, लेकिन आज आपके जरिए हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स बिल्कुल जैसे आपके पिताजी ने आपको सिखाया और आपको सीख दी, तो आपने उसी तरह से बिल्कुल हम सबको अपना समझकर इतनी इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी इतने कई सारे राज जो होते हैं वो शेयर किए, जो आई एम श्योर हर कोई जो भी म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहता है या फिर संगीत प्रेमी है उस सबके लिए बहुत ही काम आएंगी, तो उसके लिए हम शुक्रिया अदा कह सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स और लिसनर्स हैं डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान सर के काम तो मशहूर हैं ही, बल्कि रबानी भाई से हमारी बात हुई थी तो उनकी वाइफ ने जो किताब लिखी है उस्ताद गुलाम
जी
मुस्तफा खान सर की लाइफ के ऊपर,
जी she has co-written with my father, मेरे पापा ने के बारे में, पापा की लिखी हुई है जिसमें उन्होंने साथ में co-writer है,
क्या
और
बात
बहुत
है,
अच्छा काम किया है उनकी वाइफ ने, बहुत अच्छा काम किया है। पापा एक चीज बोलते थे कि इस दुनिया में कोई गैर नहीं है, सब अपने हैं, क्योंकि सबका बनाने वाला एक ही मालिक है, अल्लाह ने सबको बनाया, तो सब गैर कैसे होंगे जब एक ही ने बनाया है, तो सब तो उसके ही प्रोडक्ट है ना, तो कोई अलग हो ही नहीं सकता, सब एक ही है,
लेकिन
इसमें
ये जो
कोई वो नहीं।
जेनरस एटीट्यूड है, ये जो इतना हम्बल और जो जिसे कहते हैं बिल्कुल खुले दिल खुला मन जो है, वो आज की तारीख में बहुत कम, बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, इसलिए
देखिए
बहुत ही
आपको
नया
उसके
लगता है।
उसके लिए आपको, यू हैव टू बी वेरी ब्रॉड माइंडेड, और आपको ओपन होना है, क्योंकि अगर हम एक अपने आप को लिमिट में रख लेते हैं, लिमिटेड कर देते हैं, अपने दिमाग को एक जगह बांध देते हैं, उसको तो हमने पहले ही डिसाइड कर दिया कि बस इतना ही है। यू हैव टू ओपन दैट आउट, अनलेस दैट शेल इज ओपन नथिंग विल कम, क्योंकि ये एक जिंदगी, एक सोच का प्रोसेस है, और इंसान को कुछ ना कुछ इसमें सीखने मिलता रहता है। उसके लिए हमें दिमाग खोलना है, ये नहीं कि ये छोटा है, कभी कभी बच्चे भी सिखा देते हैं, एज ए गुरु हमें अपने शागिर्दों से बहुत कुछ सीखने मिलता है,
वाह
क्योंकि ये जो है ना, देखो हम जब सिखाते हैं, एक शागिर्द का कुछ प्रॉब्लम होता है, दूसरे का कुछ होता है, ऐसा तो नहीं है मुझे सारी चीजें पता है, मुझे
जी
तो, मैं तो बोला
जी
मुझे कुछ भी नहीं पता है, थोड़ा सा कुछ आता है हल्का सा, लेकिन ये उनका प्यार है कि वो मेरे पास आके सीखते हैं। तो वो जब कोई सवाल करते हैं तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास उसका जवाब हो, लेकिन मैं अल्लाह से मांग के बैठता हूँ कि भाई कोई भी सवाल करें तो मुझे पास उसका जवाब दे देना और इनका मसला हल करवा देना, तो वो मुझे दे देता है, उनका मसला हल हो जाता है, तो ये उसकी मेहरबानी है। तो मुझे उसके लिए दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा। अब वो शागिर्द कुछ कह रहा तो अरे क्या कैसी बात कर रहा हूँ, नहीं, क्योंकि मुझे याद है दुबई में मैं और मेरा भाई कादिर, हम पापा के साथ थे,
जी
तो हम शोज में गए हुए थे, कुछ वर्कशॉप्स थे और नंबर ऑफ शोज थे वीकेंड्स पे। तो वी वर देयर फॉर 3 मंथ्स एंड माय फादर वाज देयर फॉर 2 मंथ्स। आसपास के एरिया में सारे शोज थे, एवरी वीक दो दो शोज होते थे, दो दो तीन तीन, एंड वर्कशॉप्स थे हमारे काफी काफी, कुछ वर्कशॉप्स थे अलग अलग एरियाज में पापा के। तो वी वर असिस्टिंग हिम इन दैट। तो हमने ऑर्गेनाइजर को, पापा ने बोला था कि मुझे अपार्टमेंट्स देना, आई डोंट स्टे इन होटल, कोई अपार्टमेंट में आई वांट टू स्टे, एक घरेलू माहौल रहता है, आई वांट टू बी देयर। तो बोले ठीक है, उन्होंने वो हमें अपार्टमेंट दिया हुआ था, अच्छा बड़ा अपार्टमेंट दिया हुआ था। तो एक लड़की सीखने आती थी पापा के पास, उसको पता चला था, तो वो किसी के थ्रू आई और सीखने आई। अब वो सुबह में 7 बजे आती थी, और हम म्यूजिशियंस हैं, तो हमारे म्यूजिशियंस का तो, और इवन योर फील्ड, हम लोग लेट स्लीपर्स हैं,
बिल्कुल
दो दो तीन तीन चार चार बज जाते हैं सोते सोते। बट माई फादर वॉज वेरी पर्टिकुलर कि वो कितने बजे भी सोए, वो 7 बजे आएगी, आना है तो 7 ही बजे बुलाऊंगा उसको, सिखाऊंगा। तो वो 7 बजे सिखाते थे। अच्छा, वो आने के बाद वो कुछ बेसुरा गा रही है, कुछ गा रही, तो हम तकिया कान पे रख लेते थे बेडरूम में, और फिर पापा कुछ बोलते थे उसको। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 25 ईयर्स बैक,
ओह माय गॉड,
काफी पुराना है, हम भी उस टाइम पे बड़े यंग हुआ करते थे, तो पेशेंस नहीं था हमारे अंदर भी। तो वो बड़ा बेसुरा गाती थी, और फिर पापा उसको समझाते थे, बेटा नहीं ऐसा नहीं, तो वो आर्ग्यूमेंट्स करती थी, अरे नहीं गुरुजी ऐसा सही है, ये ऐसा कुछ होता था। तो एक दिन मैंने पापा को बोला, तो पापा ये तो सुबह सुबह की तरह बेसुरा गाती है, और बेसुरा गाती है तो छोड़ दें, वो तो एक अलग चीज है, देन शी आर्ग्यूज विद यू, वो बड़ा अजीब सा लगता है ये, और वो आर्ग्यू करती, तो इसको बंद कर दो सिखाना, आप मत सिखाइए प्लीज। वन थिंग ही टॉट अस ऑन दैट डे, आई लर्न वन थिंग फ्रॉम हिम दैट चेंज्ड माय टीचिंग फॉर्मेट एंड माय टीचिंग लाइफ। उन्होंने मुझसे एक चीज बोली, बेटा गुरु के अंदर पहले पेशेंस होना चाहिए सिखाने के,
ओह
जब तक तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, वो तो बेचारा भटका हुआ है, वो तुम्हारे पास इसीलिए तो सीखने आया कि नहीं है उसके पास, वो
अनजान है,
तुम्हारे पास इसीलिए सीखने आता है, अनजान है, वो तालीम हासिल करने आया, और तुम विद्या देने बैठे हो, तो जब तक तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं, तुम दोगे क्या? जब तुम ही इतने गुस्सैल होगे, गुस्सा करोगे, नाराज हो जाओगे, तो फिर तुम्हारे अंदर से तुम दे नहीं पाओगे। अगर देना है तो पहला सबक तुम्हारा यह है कि तुम्हें पेशेंस होना है।
ओह
तो वो फिर
वाह,
हमने उधर से, आई पुट इट इन टू माई सेल्फ ऑल्सो, और आई एम वेरी पेशेंट विद माई स्टूडेंट्स नाउ। वो उन्हीं की मेहरबानी है जो उन्होंने मुझे, मैं पहले भी सिखाता था, क्योंकि मुझे, मैं आई वॉज इन, एक बात बताऊं बड़ी हंसी की बात है, कि मैं 10वीं में था और तब से मैं शागिर्द सिखा रहा हूँ। इट्स मोर देन 35 ईयर्स
ओह माय गॉड, ओह माय गॉड,
आई बीन टीचिंग स्टूडेंट्स 35 36 ईयर्स। रहमान भाई के साथ बहुत काम किया, तो होल होल नाइट हम तो ऐसे स्टूडियो में घुसे हैं कि पता चला दोपहर में 2 बजे का कॉल टाइम है, हम 2 बजे गए अंदर, और दिन भर हो गया और रात भर हो गया, और सुबह में 7 8 बजे निकले, तो फिर सूरज निकला, हमने अंधेरा देखा ही। तो ऐसे भी काम
बिल्कुल
किया, तो वो चलता है, बड़ा
बिल्कुल, लेकिन आज आपने
अच्छा
जो सीख ली
है।
है वो सिर्फ म्यूजिक म्यूजिक लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि एज अ पेरेंट आल्सो इट्स अ वेरी गुड एडवाइस दैट यू हैव गिवन, दैट एक गुरु के अंदर सिखाने वाले में ही इतनी पेशेंस होनी चाहिए, और तो वो एक इतनी काम की सीख है फॉर एवरी पेरेंट आल्सो, विच आई एम गोइंग टू फॉलो नाउ फॉर
ये
माय
भी ब्लड
डॉटर।
ग्रुप अच्छी चीज है ना, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि आज 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 जमाने में पेशेंस ही मिसिंग है, इसीलिए इतने सब प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंस है ही नहीं लोगों को। हर आदमी मतलब बड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया है, थोड़ी सी बात पे डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ी सी बात पे झगड़े हो जाते हैं, थोड़ी सी बात पे क्या क्या हो जाता है दुनिया में। तो वो सब चीजें जो है जरूरी है कि पेशेंस होए, तो अच्छी चीज है, ये तो हमने सीखी है, तो मैंने आपको एक जिक्र में बताया, अच्छा है अगर लोगों को इसका फायदा हो, तो मैं मालिक का शुक्र गुजार हूंगा कि मुझे जो सीखने मिला, अगर वो मैंने मेरे बताने से लोगों को समझ में आए और सीखने मिले, तो ये उसकी बड़ी मेहरबानी है।
I think this would be the right time to have Mr. Faiz with us. तो आप अगर बुला
फैज आ
सकते थे
जाओ,
अपने बेटे को भी,
फैज आ जाओ,
हमारे लिसनर्स और हमारे व्यूअर्स को मैं बता दूं कि गुलाम मुर्तजा खान सर के जो बेटे हैं मिस्टर फैज, ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, क्योंकि
हाय
बहुत ही, हाय हेलो हाउ आर यू,
हाय,
बहुत ही छोटी उम्र में फैज आपने AR रहमान से लेकर हरिहरन सर जैसे कई नामी कलाकारों के साथ आपने स्टेज पर परफॉर्म किया है, आज भी कर रहे हैं, और यू आर यू नो वन ऑफ द मोस्ट फॉर्चुनेट यू नो पीपल आई कैन से ऑन अर्थ, जो इतने इतने यू नो कमाल की यू नो कमाल के घराने में पैदा हुए हैं।
इबा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वॉट एवर आई एम, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई ग्रैंड फादर उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, और एंड आफ्टर दैट जो भी है मेरे अंकल से, पापा से, सबसे सीखने को मिला मुझे। और बस यही है कि म्यूजिक के लिए लगा हुआ हूँ मैं, और बस लोगों का प्यार चाहता हूँ, और मैं जो भी हूँ पीपल्स आर्टिस्ट हूँ, सो पब्लिक का प्यार मिले वो इम्पोर्टेंट है।
और क्योंकि आप हिंदुस्तानी क्लासिकल यू नो म्यूजिक का जो ट्रेडिशन है उससे तो आप यू नो बचपन से वाकिफ हैं ही, और वो ही माहौल रहा है, लेकिन आप एक यू नो बहुत ही आप बहुत यंग हो, तो आप कौन से अलग अलग जॉनर को यू नो ट्राई कर रहे हैं, और कौन से अलग अलग जॉनर में आप संगीत यू नो बना रहे हैं, तो उसके बारे में भी जरा हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को बताएं।
जैसे मेरे दादा ने हमेशा मुझे समझाया कि संगीत जैसे चैप्टर्स हैं, जैसे
बिल्कुल
दादा ने वो किया है कि बुक है और इसमें सब चैप्टर्स हैं, ख्याल गायकी भी है, गजल भी है, सब है। तो उसी हिसाब से मैं भी अपने आप को दादा के फुटस्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। मैं अपने मैं सुनता हूँ दादा ने जो भी समझाया है। दादा ने बोला हर चीज को एक्सपेरिमेंट करो, तो आई सिंग ऑल टाइप्स ऑफ जॉनर्स, मतलब
या
सूफी भी हो जाता है, फिल्मी सॉन्ग्स हैं, गजल वगैरह है, क्लासिकल तो है ही।
अब मैं चाहूँगा कि फैज़ मेरे पिताजी उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब की बहुत ही खूबसूरत कंपोज्ड की हुई गज़ल, जो उन्होंने गाई भी है काफ़ी बार, और उसको हरी भाई ने भी गाया और शागिर्दों ने भी और लोगों ने भी गाया है, बहुत बेचैन है दिल। ये फैज़ आपके नज़र कर रहा है और मैं चाहता हूँ आप लोग इसे बहुत दुआ दें, आशीर्वाद दें। बेचैन है दिल, तुम जहाँ भी हो चले आओ, बहुत बेचैन है दिल, तुम जहाँ भी हो चले आओ, सितारों के सजे महफिल ना उठ जाए, चले आओ, बहुत बेचैन है तुम्हारी बेरुखी ने यू हमारा दिल बहुत तोड़ा, तुम्हारी बेरुखी ने यो हमारा दिल बहुत तोड़ा, उसी दिल ने तुम्हें आवाज दी है, तुम चले आओ, तुम्हें आवाज दी है, तुम चले आओ, बहुत बेचैन है।
गुलाम मुस्तफा खान सर के ग्रैंडसन मिस्टर फैज यू नो निभा रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह, तो आई थिंक वी आर जस्ट सो फॉर्चुनेट। एंड आपका कोई मैसेज जो आज आप यू नो लिसनर्स और व्यूअर्स को देना चाहते हैं, फैज आप कुछ कहें।
व्यूअर्स और लिसनर्स को मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी है सब आप लोग सुनते हैं और सब आप लोग की ब्लेसिंग्स हैं, सो वही है कि सब इंकरेज करते हैं, सब पब्लिक आर्टिस्ट, सब आर्टिस्ट को, तो ऐसे इंकरेज करते रहें, बस वही एक गिफ्ट रहेगा हम लोग के लिए भी और उनके लिए भी दूसरे को।
बिल्कुल, और
मैं एक चीज बोलूंगा,
हाँ जी हाँ जी सर बिल्कुल बोलिए।
मैं एक चीज बोलूंगा कि मेरा ये है एक मैसेज कि हासिल करने के लिए मेहनत करो उसको। अगर आपको अचीव करना है, अ पर्सन कैन ओनली अचीव आफ्टर ही वर्क्स फॉर इट, तो प्लीज मेरे पापा बोलते थे कोई शॉर्टकट नहीं होता है,
शॉर्टकट
सो डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, प्लीज गिव योर टाइम. ऐसा है कि अगर हम किसी चीज की वैल्यू करेंगे तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि अगर एक हीरे का टुकड़ा अनशेप्ड हीरा है कोई और वो सड़क पे पड़ा है तो मुझे शीशा लगेगा, लेकिन जौहरी उसको उठा के ले जाएगा, एक नजर में उसको समझ में आ जाएगा कि ये हीरा है, वो उठा के ले जाएगा. तो जौहरी बने और तराशें अपनी कला को. अगर कला को तराशेंगे तो फिर अल्लाह मददगार है, बिल्कुल मदद करेगा, मालिक आपकी जरूर मदद करेगा. तो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें उस लक्ष्य पे काम करना पड़ेगा. तो यही है कि आप लोग जो भी संगीत से जुड़े हैं लोग, जो सीखते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये संगीत जो है, गाना तो देखो हर आदमी गा लेता है, क्योंकि जो सुनता है वो गा लेता है. पापा बोलते थे गाना सबसे आसान है, कोई भी गा सकता है, हर आदमी गाता है, टांगे वाला भी गा लेता है, काम वाला जो काम करने आता है घर में, वॉचमैन, दूध वाला, रिक्शा वाला, सब गा लेते हैं. लेकिन हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि समझ के गाना. तो अगर गाना सही से गाना है और समझ के गाना है तो उसके लिए मेहनत करना.
बिल्कुल बिल्कुल,
प्लीज आप लोग सब लोग मेहनत करिए और बिल्कुल इसको हासिल करें, मेहनत करके ही हासिल करें. क्योंकि हमारा जो म्यूजिक है ये पापा से, जब भी आशा जी और मन्ना दा सीखते थे तो कुछ लोगों ने बोला, अरे इतने बड़े क्लासिकल के म्यूजिशियन से सीख रहे हो आप, गला वाला खराब हो जाएगा क्या, वो हैवी वॉइस में सब लोग गाते, क्लासिकल वाले एक वो बन गया ना एक, हैवी वॉइस में गाते हैं और वो वैसे ही तुम्हारी आवाजें हो जाएंगी, है वो. तो वो लोग घबरा के पापा को बोले, गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं. तो पापा बोले, कोई बात नहीं, तुमने पहले जिनसे भी सीखा है, या तो क्लासिकल आर्टिस्ट से सीखा या लाइट के आर्टिस्ट से सीखा है, मैं म्यूजिक का आर्टिस्ट हूँ,
तो कोई फर्क नहीं,
फिक्र नहीं करो, हाँ रियाज करो और देखो इंशाल्लाह अच्छा होगा. फिर उन्होंने बताया आके कि थोड़ा रियाज करने के बाद, अरे हमें तो बड़ा आसानी हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है. पापा हमेशा एक चीज बोलते थे, शागिर्दों को बोलते थे, तुम अपना क्या प्रॉब्लम्स है मुझे मत बताना, सीखो तुम्हारे अंदर क्या प्रॉब्लम है मुझे मत बताओ. वो समझ जाते थे, स्कैन कर लेते थे प्रॉब्लम्स, वो बोलते थे मुझे बताओ मत. और फिर क्या होता था, जब वो रियाज करते थे, खुद कुछ दिनों बाद रियाज करने के बाद आउट ऑफ एक्साइटमेंट खुद बोलते थे, गुरुजी मुझे ये सांस की प्रॉब्लम होती थी, इतना अच्छा हो गया ये रियाज से मेरा, गुरुजी मेरा रेंज कम था, बढ़ गया, बेस में नहीं गा पाता था, वो करने लगा. तो क्योंकि पापा एक ऐसे, मेरे ख्याल से अकेले ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 4 ऑक्टेव्स में गाया.
ओहो
यस, बिकॉज जो उनका भाग्यश्री का एक रिकॉर्ड 70s में निकला था, वो नौशाद साहब ने, म्यूजिक कंपोजर नौशाद अली,
क्या बात है,
उनसे काफी अच्छी दोस्ती थी पापा की. तो वो बोले, खास साहब मैं बड़ा हैरान हूं कि इतना लो बेस रिकॉर्ड कैसे हो गया, क्योंकि उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक माइक पे पूरा काम होता था, इतना लो बेस कैसे रिकॉर्ड हो गया, आपकी वॉइस में तो नेचुरल बेस है, खुद ही इतना हैवी बेस है कि वो इतना नीचे जाने के बाद भी रिकॉर्ड हो गया. तो पापा बोलते थे, मैं हमेशा एक चीज करता था कि कोई मुझसे बोलता था, अरे बड़े गुलाम अली आवाज, खास साहब की आवाज ऐसी चौड़ी थी, तो मैं दुआ मांगता था, या अल्लाह ये खूबी मेरे अंदर दे दे. बोले आमिर खान साहब की विलंबित ऐसी थी, वो ऐसी है, बोले अल्लाह ये मेरे, वो आपके उस्ताद निसार हुसैन खान साहब ऐसा सट्टा लगाते थे, मतलब एक स्ट्रेट तान ऐसा मारते थे, तो या अल्लाह ये मुझे ये खूबी मेरे अंदर दे दे. बरकत अली खान साहब का ये अच्छा था, ये मुझे दे दे, या अल्लाह ये मुझे दे दे. बोले जो भी मुझे कोई तारीफ करता था, मैं अल्लाह से मांगता था ये खूबी मेरे अंदर दे दे. उसका नतीजा ये हुआ कि 1977 में कलकत्ते में, 75 या 77 में कलकत्ते में, अमजद अली खान साहब ने अपने फादर उस्ताद हाफिज अली खान साहब की बरसी की, तो उसमें 17 दिन की कॉन्फ्रेंस रखी. तो पापा को उसमें आमिर खान साहब भी थे, फिरकुआ खान साहब भी थे, सब बड़े बड़े उस्ताद पंडित लोग थे. तो उसमें पापा जिस दिन गाए, तो पापा एक राग पटदीप होता है, पटदीप
जी, जी, जी.
तो हाँ, 5 सुरों का राग है. तो वो पापा ने खाली पंचम 54 मिनट में लगाई थी विलंबित में. अमीर खान साहब ऐसे ऐसे पेट पकड़ के खड़े थे, क्या कर रहा है, इतना सुकून से गा रहे हैं. तो वो फिर अमजद अली खान साहब क्रॉल करके गए स्टेज पे और पापा को कान में बोले, भाई साहब अब्बा की आज ही बरसी है और आपने 54 मिनट में पंचम लगाया. तो वो बड़ा अल्लाह की देन थी पापा के लिए. ये सब वो बोलते थे, मैंने मांगा और उसने मुझे दिया, ये उसने बहुत मेरे ऊपर कर्म किया।
क्या बात है, क्या बात है, आज तो भाग खुल गए हमारे। रियली
आप भी
सच
गाती हो नहीं
में
गाती हो? आप भी गाती हो नहीं गाती हो? मुझे
मैं
लगता है गाती
गाती
हो
हूँ।
आप,
मैंने
मुझे लगता है।
थैंक यू
मैं समझ गया था,
मैं जब
मैं समझ
छोटी
गया
थी
था।
8 9 स्टैंडर्ड में, तब मैंने कुछ शायद 20 राग सीखे ये। और आज बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि हम आप सबसे रूबरू हुए। और यू नो फैज, यू नो आई थिंक ऑल आवर लव टू यू। यू नो बॉलीवुड को आपकी जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड नीड्स
दुआ
यू,
करो,
बिकॉज यू
दुआ
आर
करो,
पार्ट ऑफ दैट लेगेसी, तो वी कैन नॉट मिस दैट।
बस दुआ करो और कि ये हो जाए, अल्लाह इसको कामयाब करे,
बिल्कुल
सबकी दुआओं
बिल्कुल।
की जरूरत है।
अब हम राग कौशिक धनी में मेरे लेजेंडरी फादर उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब की एक बंदिश पेश करेंगे। Thanks a lot, Eva, for inviting me and my son Faiz Mustafa on your show and getting us connected with such wonderful audience.
So I'm on Facebook with Faiz Mustafa. My ID is Faiz Mustafa, and my Facebook page is also there, Faiz Mustafa page. Plus, I'm on Insta with Faiz Mustafa Music. The account name is Faiz Mustafa Music.
Yeah,
please follow and encourage.
Please follow and
बिल्कुल
share your love.
बिल्कुल
और मैं भी फेसबुक और इंस्टा पे हूँ मुर्तजा मुस्तफा के नाम से,
जरूर
तो आप लोग बिल्कुल फॉलो करें और देखें।
बिल्कुल,
चलें,
थैंक
थैंक
यू,
यू सो मच
थैंक
इवा,
यू
नाइस
सर,
नाइस
थैंक यू,
टॉकिंग टॉकिंग टू यू, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू।
बाय बाय
बाय,
बाय
नाइस
सर,
टॉकिंग टू यू,
बाय।
बाय।
I think it was an almost surreal experience to be associated even remotely with someone like Murtuza Mustafa, who is the son of a legendary musician like Ustad Ghulam Mustafa Khan Saab. Too kind and generous of him to have shared some great life lessons and teachings passed on to him by his late father. A few striking ones were, Sukoon se seekho. Have patience and don't be in a rush to achieve your goals, especially if you are a student of music. Treating music as a divine experience at all times, being grateful to the Almighty who has blessed us with this art. As Ustad ji said, we are receivers, not creators, not taking credit for any of our achievements. Listener, we will be listening to Rabani Khan, brother of Murtaza Mustafa ji, in our coming episode. So stay tuned to 9XM Soundcast. So guys, share with me your experience of listening to this podcast. Write to me at eva.bhatt@9xmedia.in. You can connect with me on Instagram at Eva Bhatt Podcast. Rate and review this podcast on Apple Podcasts. Subscribe to the podcast on Epilogue Media, the website, so that you don't miss any episode. You can also enjoy the videos of our previous episodes on the official YouTube channel of 9XM and Spotlamp. Just search 9XM Soundcast on YouTube. I will talk to you guys next Wednesday with a fresh episode. This is me, Eva, signing off for now. You were listening to 9XM Soundcast on Epilogue Media.